नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। श्री मोदी ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है और जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और महिलाओं को लाभ होगा।
अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को सत संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना भारत आज की वैश्विक स्थिति में अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र और सशक्त समाज की नींव है। उन्होंने कहा कि उनका काम कक्षाओं से कहीं आगे और व्यापक है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक युवा शक्ति में चरित्र निर्माण और जिज्ञासा जगाते हैं। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय संरचना से बदलकर सरल बनाकर 5% और 18% की 2-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि उस दिन सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजारों या रुपया ब्याज दर में कोई लेनदेन या निपटान नहीं होगा। इस बीच 5 सितंबर को पहले घोषित अवकाश रद्द कर दिया गया है और वित्तीय बाजार आज खुले रहेंगे। 8 सितंबर को निर्धारित सभी निपटान अब 9 सितंबर को होंगे। बम्बई उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक जलस्रोतों में पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाई समुदाय के स्वच्छ हवा और पानी के मौलिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल ई ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट, दिल्ली नगर निगम के निर्णयों पर अपीलीय न्यायाधिकरण और किशोर न्याय बोर्ड को ई कोर्ट्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा और न्यायिक अभिलेखों के डिजिटल संरक्षण की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया, जो रविवार के बाद से तीसरा बड़ा भूकंप है। रविवार को आए विध्वंसकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2200 से ऊपर पहुंच गई है। रूस के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद 26 पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग से सेना तैनात करने का औपचारिक संकल्प जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की, जिसे कोएलिशन ऑफ विलिंग कहा गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ी है।
संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आ गई है। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, दोनों टीमें दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी।
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए गुजरात के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने सुपर 4 चरण के मैच में मलेशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हराकर शानदार जीत दर्ज कर ली है। भारत की ओर से मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लकड़ा और विवेक सागर प्रसाद ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।